यशाया अध्याय 65। परमेश्वर बचे हुए इसराइलियों की प्रार्थना का उत्तर देता है। यशाया अध्याय 65 पद 1। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं। बचे हुए इसराइलियों की प्रार्थना है। यदि तूने हमें त्याग दिया है तो क्या तू हमें स्मरण करेगा? परमेश्वर उत्तर में कहता है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं। यशाया अध्याय 65 पद 1 से लेकर 5 तक। जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने की बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं, हट जा मेरे निकट मत आ क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं, ये मेरी नाक में धुए व उस आग के समान है जो दिन भर जलती है। यहां परमेश्वर वर्णन कर रहा है कि उसने किस प्रकार अपना हाथ अन्य जातियों की ओर बढ़ा दिया। पौलुस रोमियो अध्याय 10 में कहता है कि परमेश्वर ने इसराइल को एक और किया कि वो अन्य जातियों को एकत्रित करे कि वे उसके नाम में कहलाए। वो यशया का ही संदर्भ देता है जहां परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को उन्होंने पाया जिन्होंने उसकी खोज न की थी, अर्थात वो अन्य जाति की ओर हो गया जो उसके नाम से जानी नहीं जाती थी। मैं एक हठीली जाति की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। उन्होंने परमेश्वर के सामने ये घृणित कर्म किए हैं जो दिन भर जलती रहती है। यशाया अध्याय 65 पद 6 से लेकर 8 तक। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूं कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सभों को नाश न करूंगा। यहोवा कहता है, मैं एक विश्वास योग्य बचे हुए लोगों का उत्थान करूंगा। यशाया अध्याय 65 पद 9। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में इन बातों का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा और उन्हें वारिस होने के लिए लौटाकर लाएगा। वहां इन चयनित जनों को कलीसिया कहना उचित नहीं। ऐसा चाहने से इसराइल के पुनरुद्धार की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर देता है उसका निराकरण करना हुआ है। ये शिक्षा यहूदी विरोध की उत्पत्ति का कारण है। उसकी ओर ऐसे अर्थ निर्धारण का अर्थ है परमेश्वर का संबंध इसराइल से सदा के लिए समाप्त हो गया और इसराइल का काम तमाम हो गया। यहूदियों के प्रति घृणा व्यक्त करने का ये एक बहाना है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है और हम नए इसराइल हैं। यशाया अध्याय 65 पद 10 से लेकर 15 तक। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियों तो शारोन शारोन की घाटी में चरेगी और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु बर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होंगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे और प्रभु यहोवा मुझको नाश करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। क्या एक नाम और है जिस नाम के द्वारा परमेश्वर अपने दासों को पुकारता है? और अंताकिया में उन्हें ख्रिस्त अनुयायी कहा गया था। प्रभु के दासों का एक नया नाम दिया गया था। आज परमेश्वर अन्य जातियों में कार्यरत है और उनका समय पूरा होने तक क्रियाशील रहेगा। हम भी अन्य जाति में से ही है। परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा का दिन और अन्य जातियों की ओर बढ़ा हुआ परमेश्वर के हाथ का समय अब पूरा होने वाला है। यदि आपको राज्य का अंग बनना है तो शीघ्रता कीजिए, क्योंकि अवसर समाप्त होने वाला है। यशाया अध्याय 65 पद 16। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आंखों से छिप गया है। पद 17 में परमेश्वर कुछ ऐसी बात करता है जो संदर्भ से बाहर है। परमेश्वर कहता है, यशाया अध्याय 65 पद 17, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएगी। ये पद उस हजार वर्ष के युग से बाहर है। वो अगले पद में उस हजार वर्ष की बातों की चर्चा करता है। यहां वो उसके पार जाकर कहता है जिसका उल्लेख पत्रस ने अपनी दूसरी पत्री में किया है कि परमेश्वर इस संपूर्ण जगत को प्रचंड उष्मता द्वारा पिघला देगा, इसके समस्त कार्य पिघल जाएंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना करूंगा। कुछ लोग इस पृथ्वी की शाश्वतता की शिक्षा भी देते हैं कि पृथ्वी का अंत कभी नहीं होगा। वे कुछ भजनों के काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करते हैं, उदाहरण सभा उपदेशक अध्याय 1 पद 4, पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है, परंतु पृथ्वी और उसके सब काम नाश हो जाएंगे। दूसरा पत्रस में जगत के अंत का वर्णन दिया गया है। जिस अनुरचना को हम समझते और जानते हैं वो विघटित हो जाएगी। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां सृष्टि इब्रानी शब्द बारा का अनुवाद है। बारा का वास्तविक अर्थ है कुछ भी ना हो तो भी उसमें से उत्पन्न करना। ऐसा सामर्थ्य की परमेश्वर में विहित है। निर्माण और साथ के लिए एक और इब्रानी शब्द है आसा, जिसका अर्थ है साधन जुटाना। उदाहरण के रूप किसी ने इस पुलपिट की रचना की। उसने ये नहीं कहा पुलपिट हो जाए और पुलपिट बिना साधनों के प्रकट हो गया। ऐसा हो तो ये बारा है। ये काम मनुष्य के वश में नहीं। उसने लकड़ी ली, उसे काटा, उसे जोड़ा, उसे चिपकाया और पुलपिट तैयार किया। उसने साधनों को संयोजित करके पुलपिट तैयार किया। ये क्षमता तो मनुष्य के पास है। केवल परमेश्वर में वो सामर्थ्य है कि वो किसी भी साधन के बिना कुछ भी बना दे। जब परमेश्वर ने कहा, देखो मैं एक आकाश और नई पृथ्वी की रचना करता हूं, जैसा कि यशया में लिखा है, तब वो बारा शब्द का प्रयोग करता है। वो शून्य से नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। अब ये देखते हुए कि आज की पृथ्वी और जगत पिघल जाएगा और उसमें उपस्थित सब कुछ भी पिघल जाएंगे, तो हमें किस प्रकार के व्यक्ति होना आवश्यक है? यदि संपूर्ण भौतिक संसार पिघल जाएगा तो मुझे किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? यदि मैं पूरा भौतिकवादी हूं तो मेरा सत्यनाश है, अतः मैं कैसा व्यक्ति बनूं? मुझे आत्मिक होना है। मुझे आत्मिक बातों में जीवन का मूल्य देखना है। मुझे स्वर्ग में धन एकत्र करना है, जहां दीमक नहीं लगती, जहां चोर चोरी नहीं कर सकता। मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। मुझे आत्मिक बातों का ध्यान करना है। ये संसार तो नाश हो जाएगा। अतः देखो मैं सृष्टि करता हूं। बारह, शून्य से एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, और पुरानी बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएगी। जब हम उस अंतिम युग में प्रवेश करेंगे, अर्थात हजार वर्ष के अंत में नए आकाश और नई पृथ्वी पर, तब हम नहीं कह सकेंगे उस दिन जब हम समुद्र के किनारे थे। ऐसी बातें हमारे मन में भी न आएंगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यदि स्वर्ग में मेरे माता पिता और मेरी संतान होंगे तो मैं कैसे खुश रहूंगा। वहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां यादें नहीं रहेंगी। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा परमेश्वर की अवहेलना का वो ऐतिहासिक दिन याद न रहेगा। इस विद्रोह के द्वारा आए समस्त कष्टों को भुलाया जा चुका होगा। अब उस हजार वर्ष के युग में, यशाया अध्याय 65 पद 18 और 19, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने वो चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। ये परमेश्वर के राज्य के युग में होगा। वो महिमा समय होगा। यशाया अध्याय 65 पद 20, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। उस समय यदि किसी 100 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होगी तो आप कहेंगे कैसी दुख की बात है, 100 वर्ष का जवान मर गया, क्योंकि इस 1000 वर्षों में पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा और वो नूह के जल प्रलय से पूर्व की अवस्था में आ जाएगी। उस समय परमेश्वर फिर से पृथ्वी पर वो कवच डालेगा जो किरणों के विकिरण से संसार की रक्षा करेगा और आयु के समापन की क्रिया में कमी हो जाएगी। ये वो छतरी होगी जो हमें नूह के युग में पृथ्वी की रक्षा करती थी। मनुष्य की आयु क्यों इतनी अधिक थी? डायनासोर क्यों इतने विशाल होते थे? कॉकरोच क्यों एक एक फुट के होते थे आदि? ये सब हम अपने अध्ययन में देखेंगे। नूह के जल प्रलय ये पूर्व की पृथ्वी का अध्ययन अति रोचक होगा, क्योंकि जो लड़कपन से मरने वाला हो वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। यशाया अध्याय 65 पद 20 के अंत में लिखा है, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। इस 1000 वर्ष के युग में हम मरेंगे नहीं, हम नई देह में होंगे। परमेश्वर के राज्य के युग में हम इस संसारिक डेरे से निकलकर नई देह में होंगे, परंतु महाक्लेश के समय तक इस पृथ्वी पर लोग जीवित रहेंगे जो यीशु मसीह के आगमन पर समस्त जातियों के न्याय के दिन तक रहेंगे। वे परमेश्वर के राज्य के युग में जीवित रहेंगे। हम तो मसीह के साथ राज करेंगे और धार्मिकता के प्रवर्तक होंगे। पृथ्वी पर याजकों का राज्य बनकर मसीह का प्रकाशन मनुष्यों को देंगे और मनुष्यों को मसीह के पास लाएंगे। हम इन 1000 वर्षों में अपनी नई देह में मसीह के राज्य शासन और राज करने के लिए उपस्थित होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हमारी ये नई देह कैसी होगी? उत्तर तो मैं खुद सच में नहीं जानता, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि वो देह वर्तमान देह से कहीं अत्यधिक उत्तम ही होगी। पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 35, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? उसने उत्तर दिया कि मृत्यु को त्याग कर शिक्षा तो प्रकृति ही तुम्हें देती है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तब वो नई देह को मृत्यु के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है, और ये नई देह वो देह नहीं है जिसे मिट्टी में दबाया गया है। इसका साधारण सा अर्थ ये है कि मरणोपरांत ये देह मेरी नहीं रहेगी, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक अन्य देह प्राप्त होगी। मेरी नई देह परमेश्वर को प्रसन्न करेगी और मेरी चिंता का विषय बस यही है। मैं ये जानता हूं कि यदि परमेश्वर उस देह से प्रसन्न है तो उससे अधिक मेरी प्रसन्नता क्या हो सकती है? इस नई देह की क्षमताएं क्या होंगी? मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूं, हम इस नई देह में कैसे आना जाना करेंगे? इस विषय में अनेक रुचिकर दृष्टिकोण है। हो सकता है कि उसकी अनुरचना इस देह की रचना से भिन्न हो। ये तो बड़ी विचित्र सी बात होगी, क्योंकि तब तो आप दीवारों के पार निकल जाएंगे, जिस प्रकार यीशु पुनरुत्थान के बाद था। ये सब अभी तो कल्पना का विषय है तथा भविष्य के लिए आशा है। यशाया अध्याय 65 पद 21 और 22, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, वा वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरे चुने हुए अर्थात यहूदी। यशाया अध्याय 65 पर 23 और 24, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर की निकटता और लोगों के साथ घनिष्ठता। यशाया अध्याय 65 पद 25, भेड़िया और मेमना एक संग चारा करेंगे, प्रभु के राज्य का मधुर युग। यशाया अध्याय 65 पद 25, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएंगे और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी एक बार फिर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाएगी। सृष्टि परमेश्वर के साथ मिलकर रहेगी और मनुष्य का परमेश्वर से मेल हो जाएगा। जरा सोचिए, आदम ऐसी स्थिति में था, उसका जीवन कैसी महिमा का जीवन रहा होगा। संपूर्ण सृष्टि के साथ मेल मिलाप, सब कुछ परमेश्वर के साथ महिमा में चल रहा था। ओह, पाप ने कैसा विनाश किया कि उसने मनुष्य को परमेश्वर के मेल और सृष्टि के सामंजस्य से दूर कर दिया। मुझे अंग्रेजी का एक गाना याद आता है जिसका अर्थ है, ये मेरे पिता का संसार है, पूरी सृष्टि गाती है और उस संगीत की गूंज मेरे चारों ओर के वातावरण में सुनाई देती है। परंतु मनुष्य सृष्टि और परमेश्वर से बेमेल हो गया है और उसके पाप के कारण सृष्टि भी श्रापित होकर परमेश्वर की संगति से दूर हो गई है। प्राणी जगत भी, शेर और भेड़िया का उग्र स्वभाव, ये सब बातें परमेश्वर के मेल से दूर हैं। वे सब मनुष्य के पाप की वजह से कष्ट में हैं।